कुंज बिहारी चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री निताय गौर हरि की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 नारायणं नमस्कृत्य
नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं
नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरये
ततो जयमुदीरये
नष्टप्रायेष्वभद्रेषु
नष्टप्रायेष्वभद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया
नित्यं भागवत सेवया
भगवत्युत्तमश्लोके
भगवत्युत्तमश्लोके
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी।
ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम चौथा स्कंद 21वां अध्याय महाराज पृथु द्वारा उपदेश। श्लोक संख्या 22। अहम् दंडधरः
दंडधरः
राजा
प्रजानां
इह योजितः
योजितः
रक्षिता
वृत्तिदः
स्वेषु
सेतुषु
स्थापिता
पृथक्
अहम दंडधरो राजा,
अहम दंडधरो राजा,
प्रजानाम इह योजितः,
प्रजानाम इह योजितः,
रक्षिता वृत्ति दहस्वेषु,
रक्षिता वृत्ति दहस्वेषु,
सेतुषु स्थापिता पृथक्,
सेतुषु स्थापिता पृथक्,
अहम दंडधरो राजा,
अहम दंडधरो राजा,
प्रजानाम इह योजितः,
प्रजानाम इह योजितः,
रक्षिता वृत्ति दहस्वेषु,
रक्षिता वृत्ति दहस्वेषु,
सेतुषु स्थापिता पृथक्,
सेतुषु स्थापिता पृथक्,
अहम दंडधरो राजा,
अहम दंडधरो राजा,
प्रजानाम इह योजितः,
प्रजानाम इह योजितः,
रक्षिता वृत्ति दहस्वेषु,
रक्षिता वृत्ति दहस्वेषु,
सेतुषु स्थापिता पृथक्,
सेतुषु स्थापिता पृथक्,
अहम दंडधरो राजा,
अहम दंडधरो राजा,
प्रजानाम इह योजितः,
प्रजानाम इह योजितः,
रक्षिता वृत्ति दहस्वेषु,
रक्षिता वृत्ति दहस्वेषु,
सेतुषु स्थापिता पृथक्,
सेतुषु स्थापिता पृथक्,
अहम दंडधरो राजा,
अहम दंडधरो राजा,
प्रजानामिह योजितः,
रक्षिता वृत्तिदहस्वेषु, रक्षिता वृत्तिदहस्वेषु,
सेतुषु स्थापिता पृथक्,
सेतुषु स्थापिता पृथक्,
अहम दंडधरो राजा,
अहम दंडधरो राजा,
प्रजानामिह योजितः,
प्रजानामिह योजितः,
रक्षिता वृत्तिदहस्वेषु,
रक्षिता वृत्तिदहस्वेषु,
सेतुषु स्थापिता पृथक्,
सेतुषु स्थापिता पृथक्,
अहम दंडधरो राजा,
अहम दंडधरो राजा,
प्रजानामिह योजितः,
प्रजानामिह योजितः,
रक्षिता वृत्तिदहस्वेषु,
रक्षिता वृत्तिदहस्वेषु,
सेतुषु स्थापिता पृथक्,
सेतुषु स्थापिता पृथक्,
अहम
अहम
मैं दंडधरः,
दंडधरः,
राज दंड धारण करने वाला,
राज दंड धारण करने वाला,
राजा
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 राजा,
प्रजानाम
प्रजानाम,
प्रजा का
प्रजा का,
इह
इह
इस संसार में,
इस संसार में,
योजितः
योजितः,
तत्पर
तत्पर,
रक्षिता
रक्षिता,
रक्षक
रक्षक,
वृत्तिदः
वृत्तिदः,
आजीविका देने वाला,
आजीविका देने वाला,
स्वेषु
स्वेषु,
अपने आप में,
अपने आप में,
सेतुषु
सेतुषु,
अपने अपने,
अपनी अपनी,
सामाजिक व्यवस्थाओं,
सामाजिक व्यवस्थाओं,
मर्यादा
मर्यादा
में,
ने,
स्थापिता
स्थापिता,
स्थापित
स्थापित,
पृथक
पृथक,
अलग अलग
अलग अलग,
अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। राजा पृथु ने आगे कहा, भगवत कृपा से मैं इस लोक का राजा नियुक्त हुआ हूँ और मैं प्रजा के ऊपर शासन करने, उसे विपत्ति से बचाने तथा वैदिक आदेश से स्थापित सामाजिक व्यवस्था में प्रत्येक की स्थिति के अनुसार उसे आजीविका प्रदान करने के लिए यह राजदंड धारण कर रहा हूँ। तात्पर्य यह माना जाता है कि राजा की नियुक्ति भगवान द्वारा अपने लोक विशेष के हित की रक्षा के लिए की जाती है। प्रत्येक लोक में एक अधिष्ठाता व्यक्ति होता है, जिस प्रकार आजकल प्रत्येक देश का एक राष्ट्रपति होता है। यदि कोई राष्ट्रपति या राजा बनता है तो यह समझना चाहिए कि उसे यह सुअवसर ईश्वर प्रदत्त है। वैदिक पद्धति के अनुसार राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर प्रजा द्वारा उसका मानव रूपी ईश्वर के ही समान आदर किया जाता है। वास्तव में वैदिक आदेशों के अनुसार परमेश्वर समस्त जीवात्माओं का और विशेष रूप से मनुष्यों का पालन करता है, जिससे वे उच्चतम पद प्राप्त करें। निम्न योनियों में अनेक जन्म लेते रहने के बाद जब जीवात्मा की मनुष्य योनि प्राप्त होती है, विशेष रूप से सभ्य जीवन का, तो समाज चार श्रेणियों में बंट जाता है, जैसा कि भगवान ने भगवद गीता में कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। ये चार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र समाज के प्राकृतिक वर्ण हैं। और जैसा कि पृथु महाराज ने घोषणा की कि प्रत्येक वर्ण के प्रत्येक व्यक्ति को जीवकोपार्जन का उपयुक्त साधन प्राप्त होना चाहिए। राजा या सरकार का कर्तव्य है कि वह देखे कि लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन करें तथा अपने अपने अवस्था में लगे हों। आधुनिक समय में सरकारी या राजकीय संरक्षण प्राप्त न होने से सामाजिक व्यवस्था लगभग ढह गई है। किसी को भी ज्ञात नहीं है कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य अथवा कौन शूद्र है। लोग अपने को जन्म से ही किसी वर्ण विशेष से संबंध बताते हैं। सरकार का कर्तव्य है कि वह वृत्तिपरक कार्यों तथा भौतिक प्रकृति के गुणों के अनुसार वर्णाश्रम व्यवस्था स्थापित करे, जिससे संपूर्ण संसार सांस्कृतिक हो सके। यदि सरकार चार सामाजिक वर्णों का पालन नहीं करती तो मानव समाज पशु समाज के तुल्य है, जिसमें न शांति और न संपन्नता रहती है, अशांति व्याप्त रहती है। आदर्श राजा के रूप में महाराज पृथ्वी ने वैदिक सामाजिक अवस्था का दृढ़तापूर्वक पालन किया। प्रजायते इति प्रजा। प्रजा शब्द का अर्थ है जो जन्म लेता है। अतः पृथु राजा ने अपने राज्य में जन्मे सभी लोगों प्रजा नाम को सुरक्षा प्रदान की। प्रजा का अर्थ न केवल मनुष्य है, वरन इसमें पशु, वृक्ष तथा अन्य सजीव प्राणी भी आते हैं। यह राजा का कर्तव्य है कि वह सभी को संरक्षण तथा भोजन प्रदान करे। आधुनिक समाज के मूर्ख तथा धूर्त जन सरकार के उत्तरदायित्व क्षेत्र को नहीं जानते। पशु भी उस भूमि की प्रजा हैं जिसमें उनका जन्म होता है, और उन्हें भी भगवान के सहारे जीने का अधिकार प्राप्त है। पशुओं की बड़े पैमाने पर हत्या से पशुओं की जनसंख्या में गड़बड़ी होने के कारण कसाई देश तथा सरकार का भविष्य संकट में पड़ जाएगा। अनुवाद को छोड़िए। राजा पृथु ने कहा,
राजा पृथु ने कहा,
भगवत कृपा से मैं इस लोक का राजा नियुक्त हुआ हूँ और मैं प्रजा के ऊपर शासन करने उसे विपत्ति से बचाने
तथा
वैदिक आदेश से
स्थापित
सामाजिक व्यवस्था में
प्रत्येक की स्थिति
के अनुसार उसे आजीविका प्रदान करने के लिए यह राजदंड
धारण कर रहा हूँ। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णश्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस संसार में जैसे कि हम पहले कई बार चर्चा कर चुके हैं, हर एक के न केवल अधिकार होते हैं परंतु कर्तव्य भी होते हैं। जब हम केवल अधिकारों के ऊपर ध्यान देते हैं और मांगते हैं हमारे अधिकार, और हम कर्तव्यों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो समाज में व्यवस्था असंतुलित हो जाती है। जब हर एक व्यक्ति केवल लेना चाहता है और देना नहीं चाहता, तो फिर ये स्वाभाविक है कि समाज में गड़बड़ हो जाएगा। एक साधारण उदाहरण, दुकानदार के पास हम जाएंगे और हम लेना चाहेंगे दुकानदार से कुछ वस्तु, लेकिन पैसा देना नहीं चाहेंगे, तो चलेगा? ये ऐसी व्यवस्थापन चलेगी क्या कभी? तो ठीक उसी प्रकार से कर्तव्य मतलब हम देते हैं अन्यों को, दुनिया को, समाज को, और अधिकार मतलब हम प्राप्त करते हैं। जैसे मेरा अधिकार है जीना, इसका अर्थ है कि किसी ने मुझे विचलित नहीं करना चाहिए, मेरे प्राण को लेने का अधिकार किसी का नहीं है, कोई ऐसे नहीं कर सकता, मुझसे मेरा प्राण छीन नहीं सकता कोई। तो ये एक अधिकार है। आधुनिक काल में हम सब कर्तव्य के बारे में न सोचते हुए केवल अधिकार मांगते हैं। आपने ये सुना है अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या है? किसने सुना है?
फ्रीडम ऑफ स्पीच।
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब बोलने की आज़ादी, हम जो चाहिए वो बोलेंगे समाज में, उपन्यास में, समाचार पत्र में, पत्रिकाओं में, हम जो चाहे लिखेंगे, हमको आज़ादी चाहिए। और हाँ, ये स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, परंतु क्या ऐसे स्वतंत्रता की कोई सीमा है कि नहीं है? हम जो भी बोलना चाहें, मतलब क्या हम किसी को गाली देते बैठेंगे, हम स्वतंत्र हैं इसलिए, स्वतंत्र आज़ादी है बोलने की, आज़ादी नहीं ना? तो हर एक आज़ादी की कोई सीमा होती है, परंतु इन सीमाओं को न देखते हुए आधुनिक समाज में लोग क्या कर रहे हैं, इन सीमाओं को और दूर 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 धकेलते जा रहे हैं। हमको और आज़ादी चाहिए, और आज़ादी चाहिए, और आज़ादी चाहिए, परंतु जब आज़ादी दी जाती है तो आज़ादी के साथ जिम्मेदारी होनी चाहिए, उतनी परिपक्वता होनी चाहिए उस आज़ादी को संभाल के उपयोग करने के लिए। यदि हम कच्चे हैं, अपरिपक्व हैं, मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तो हमें आज़ादी मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे, उसका दुरुपयोग करेंगे और अपने आप को ही हानि पहुंचाएंगे, अन्यों को भी हानि पहुंचाएंगे। जैसे एक छोटा बच्चा है, क्या छोटे बच्चे को पूरी तरह से स्वतंत्रता दी जाती है? कोई गृहस्थ भक्त बैठे इधर, शिवाजी देते हैं? क्यों नहीं देते? इतना क्रूर क्यों बनते हो बच्चे को, इतना क्रूर? हम सब स्वतंत्र हैं, आप जहाँ चाहे घूम सकते हो, बच्चे को नहीं घूमने देते, ऐसा अन्याय क्यों? क्यों हाँ, वो उल्टा पुल्टा कर देता, क्यों करता है समझ में नहीं आता है, क्योंकि अभी तक उसकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं हुई है, इसलिए कहीं भी जाके कुछ भी कर सकता है, अपने आप को हानि पहुंचा सकता है। तो क्योंकि उसकी परिपक्वता और बुद्धि इतनी विकसित नहीं है, इसलिए पालकों को चाहिए कि वो उनकी थोड़ा रक्षा करें। तो रक्षा करने का एक रास्ता है कि उनकी स्वतंत्रता में थोड़ी सीमा लाएं, एक सीमा के भीतर उनको कार्य करने दें, उससे बाहर नहीं। इसके लिए क्या पालकों को कुछ अपने अहंकार में अच्छा लगता है कि देखो हम वश कर रहे हैं हमारे बच्चे के ऊपर, हम नियंता है, ऐसा है क्या? नहीं, बच्चे के भलाई के लिए ऐसे करते हैं, है ना? तो पालक ऐसे यदि नहीं करेंगे तो फिर बच्चा गलत रास्ते पर जाएगा। तो बच्चे को रोकना सही समय, सही ढंग से, सही कारण के लिए, ये उचित होता है। वो कहानी हम बचपन से सुनते आए हैं ना, कि एक व्यक्ति बच्चा था और वो झूठ बोलता था, झूठ बोलने की आदत थी उसको, और इकलौती माँ उसकी थी, माँ ने कभी रोका नहीं, बेचारा कह के नहीं रोका। वो बड़ा हो गया, चोर हो गया, डकैती करने लगा, खून भी किया, और जब पकड़ा गया तो उसको फांसी पे चढ़ाया गया। तो फांसी पे चढ़ाए जाने पर उसको पूछा, तुम्हारी अंतिम इच्छा है क्या कोई? बोले हाँ, मेरे माँ से बात करना है। तो माँ को बुलाया, तो वो सूली पे खड़ा ही था, फांसी के उस पे खड़ा था वो, तो माँ को बोला पास में आओ, मैं कान में कुछ बोलना चाहता हूँ। फिर उसने क्या किया, कान को काटा। क्यों काटा? तुमने मुझे समय में बताया नहीं, सिखाया नहीं तुमने। यदि बचपन में ही तुमने मुझे ठीक से सब कुछ समझाया होता, बताया होता, तो फिर आज मेरी ये दशा नहीं होती, मुझे फांसी नहीं लगती। आप अपने कर्तव्य में ठीक नहीं रहे, मुझे इतनी ज़्यादा छूट दे दी आपने, और देखो मेरी हालत क्या हो गई। तो उसी प्रकार से जैसे माता पिता बच्चे के हितैषी होते हैं, बच्चे के रक्षक होते हैं, बच्चे के मार्गदर्शक होते हैं, उसी प्रकार से जो राजा होता है वो प्रजा के पिता तुल्य या माता तुल्य होता है। और जिस प्रकार से माता पिता बच्चों का देखभाल करते हैं, रक्षण करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, वैसे ही प्रजा को करना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। तो का नाम पितरौ बंधु, ऐसे भागवत में कहा गया, शायद छठे स्कंद में है। तो का नाम मतलब बच्चे, पितरों मतलब माता पिता, बंधु। तो राजा के कर्तव्य के बारे में बताया गया कि जिस प्रकार से, और भी है वो छठे स्कंद में श्लोक का वर्णन, और भी कई उदाहरण, और जिस प्रकार से आँख की पल के आँख की रक्षा करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से राजा को अपने प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, ऐसे बताया गया है। तो जिस प्रकार से माता पिता बच्चे का देखभाल अनेक तरीके से करते हैं, तो राजा को अपने प्रजा का देखभाल कैसे करना चाहिए, इस बारे में यहाँ पर स्पष्ट में उल्लेख है। तो स्वयं राजा पृथु बताते हैं। राजा पृथु कौन है? राजा है, किसके राजा है? बेलगाम के राजा है, कर्नाटक के, महाराष्ट्र के, संपूर्ण पृथ्वी के राजा है। और इसीलिए वो घोषणा करते हैं, भगवत कृपा से मैं इस लोक का राजा नियुक्त हुआ हूँ। इस लोक का, संपूर्ण पृथ्वी का मैं मालिक, मैं राजा नियुक्त किया गया हूँ भगवत कृपा से। तो उनको ये भी पता है कि भगवान की कृपा से ये हुआ है, अर्थात वो महान भक्त हैं। और इतना ही नहीं, वो शक्ति आवेश अवतार भी हैं। तो कौन सी शक्ति उनको मिली है भगवान से? प्रजा पालन शक्ति। इसलिए राजा का जो प्रजा के पालन करने की शक्ति होती है वो क्या है? तो पृथु महाराज यहाँ स्वयं बताते हैं कि उन्होंने दंड धारण किया है। जो राजा होता है वो दंडधारी होता है। दंडधारी मतलब हाथ में दंड लेके, दंड लेके दंड देने के लिए, दंड से दंड देना, दंड मतलब लकड़ी। हाँ, तो दंड से दंड। आप में से कितने भक्तों ने ऐसा दंड अपने पाठशाला में प्राप्त किया था? सबने किया था ना, फटाक से मारते थे ना। कभी ऐसे झुको बोल के पीछे फट करके मारते थे स्केल से ना। कभी कभी हाथ सामने करो, हाथ के ऊपर मारते थे। आप ऐसे हाथ पे कितने लोगों को लगाए हैं? और आप जब ऐसे हाथ सामने करने के लिए बोला था, तो आप में से कितने भक्तों ने ऐसे ऐसे किया? सब ने किया होगा ना। तो दंड से दंड मिलता है। हमारे एक अध्यापक थे हमारे बचपन में, जो ऐसे नहीं करने को बोलते थे, ऐसे करने को बोलते थे, और इधर मारते थे। और ऐसा लगता था वो एक तो रोने लग जाते थे सब। इसके ऊपर, हड्डी के ऊपर मारने से ज़्यादा दर्द करता है ना, इधर तो ठीक है चल जाता है। तो राजा को दंड धारण करना पड़ता है। क्यों दंड धारण करना पड़ता है राजा को? क्यों? राजा केवल यदि अहिंसा का पथ अपनाए तो चल सकता है क्या? क्यों नहीं? जो दुष्ट लोग हैं वो तो खुलेआम काम करेंगे, जो दुष्ट लोग हैं वो अच्छे लोगों को सताएंगे, वो गलत काम करेंगे, तहस नहस मचा देंगे। और राजा सोचेगा कि मैं बहुत सात्विक हूँ, मुझे कुछ करना नहीं चाहिए, तो फिर वो अपने कर्तव्यों का के प्रति लापरवाही कर रहा है, और राजा दंडित हो जाएगा। यदि राजा ने अपने राजा के पद को स्वीकार करके दंड धारण नहीं किया, और दंड का उपयोग जिनके लिए करना चाहिए वो नहीं किया, तो राजा को स्वयं दंड मिलेगा। आजकल मृत्यु दंड एक बड़ा विषय बन गया है कि मृत्यु दंड देना चाहिए कि नहीं, है कि नहीं? तो आप लोग क्या सोचते हैं, मृत्यु दंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग क्या, आप में से कितने भक्त सोचते हैं कि कानून में मृत्यु दंड होना चाहिए? हाथ ऊपर कीजिए। कितने भक्त सोचते हैं कि नहीं होना चाहिए? कितने भक्त सोचते हैं पता नहीं? अच्छा एक बात बताऊं, ऐसा भी कभी हुआ है कि गलत आदमी को पकड़ा गया किसी किसी गुनाह के लिए? ऐसा होता है कभी कभी? बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है ना। तो यदि छोटे छोटे जब जो गुनाह होते हैं उनके लिए मृत्यु दंड नहीं होता है, इसलिए थोड़ा दंड मिला, दो रात को जेल में बिता के आए, ठीक है। कभी कभी 10 साल भी बिता के आता है व्यक्ति, जब बाद में पता चलता है कि वो बेगुनाह है, मतलब उसने गुनाह नहीं किया था, गलती से उसको पकड़ लिया। आखिर जो पुलिस है या जो भी है वो भी सब मनुष्य है, तो वो भी गलती करते हैं, कभी जानबूझ के कभी अनजाने में, क्योंकि उनको दिखाना पड़ता है समाज को कि हमने गुनहगार को पकड़ लिया, नहीं तो लोग बोलेंगे पुलिस क्या करती है, कुछ नहीं करती है। तो किसी न किसी को पकड़ न पकड़ लेते हैं कभी कभी, कलयुग। वो तुलसीदास की कौन सी वो पंक्ति है, भूल गया, संत को चोर करे और चोर को मुक्त करे, ये कलयुग की तमाशा, धन्य हो कली कलयुग, ऐसे एक तुलसीदास का कथा है जो प्रभुपाद जी ने एक बार बोला था। तो ऐसे गलत व्यक्ति को ऐसे गुनाह के लिए पकड़ा जाए जिसका मृत्यु दंड है, उसको मृत्यु दंड दिया जाए और बाद में पता चलता है कि ये बेगुनाह था, फिर क्या होगा? खत्म ना, अभी तो कुछ किया नहीं जा सकता। फिर भी आप बोलते हैं कि मृत्यु दंड होना चाहिए, अभी बोलिए मृत्यु दंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी हाथ ऊपर कीजिए।
मृत्युदंड होना चाहिए, लेकिन सही गुनेगार या सही उसका अपराध वो सही समझ के उसका अपराध फांसी देने के लिए है, ये जानबूझ के।
जहाँ पे कोई बिल्कुल संदेह न हो कि इसने किया है, जहाँ थोड़ा भी संदेह हो मृत्युदंड नहीं दे सकते। और जो वकील होते हैं गुनहगार की ओर से, वो क्या करेंगे, ये कोशिश करेंगे ना दिखाने के लिए कोई संशय है, वो न्यायाधीश के मन में संशय डालने की कोशिश करते हैं, इसने ऐसे किया उसने। इसमें ये लोग बहुत प्रवीण होते हैं, कैसे बात को घुमाना, कैसे जो साक्षी आते हैं उनको दिमाग फिरा देना, उनको उसके मुँह से कुछ तो बोल देना, है ना। तो इस तरह से बहुत ऐसे हो सकता है, थोड़ा संशय भी हो मृत्यु दंड नहीं दे सकते, लेकिन बिना संशय कोई हो, जैसे वो कई साल पहले वो आतंकवादी आए थे ना बम्बई वगैरह में, ताजमहल होटल ये वो सब किया था ना उन्होंने, तो उस समय एक वो आया था, उसने वो बीटी स्टेशन रेलवे स्टेशन पर जाके बंदूक मारा था, तो उसको सारा टीवी कैमरा, वो कैमरा होता है ना रेलवे स्टेशन में, सब पे पकड़ा गया, तो उसमें कोई संदेह था ही नहीं, क्योंकि साक्षी तो इतने सारे थे और सिनेमा के ऊपर सब था, तो उसको ही। तो इसलिए मृत्यु दंड शास्त्रों के आधार पर होना चाहिए, परंतु साथ साथ इतना कहें कि केवल जब 100% निश्चितता हो तब, कोई संदेह हो तो मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि गलती हो जाए तो फिर क्या हो सकता है। ऐसे होता है, मृत्यु दंड भी अनेक लोगों को मिला है। ऐसे इंग्लैंड में बहुत प्रसिद्ध खून का मामला था, जिसमें व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया भी गया एक 60-70 साल पहले, बाद में पता चला कि उसने नहीं किया था खून, लेकिन वो व्यक्ति तो मर गया ना, इसको दंड दिया था मर गया। तो ऐसे उस समय ऐसे लग रहा था कि प्रमाण ऐसा ही है, यही होगा बस, और कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन हो गया। तो खैर उसके भी कर्म के अनुसार उसको मिल गया। फिर भी तो जब बिल्कुल निश्चितता होती है तो मृत्युदंड देना अच्छा है। मृत्युदंड देना क्यों अच्छा है शास्त्रों के हिसाब से?
जब उसकी गलती को दंड मिलेगा तो दूसरे व्यक्ति देखकर सतर्क हो जाते हैं, अगर ऐसे गलती हम करेंगे तो हमको भी यही गति मिलेगी।
ठीक है, ये एक कारण। दूसरा,
उसको अगले जन्म में वो दंड आए इधर ही भुगत लिया तो नेक्स्ट गति अच्छी
हो। बहुत अच्छा, यही बात मूल बात ये है कि जैसे किसी ने खून किया और यदि उसने उसको दंड नहीं मिला मृत्यु दंड, क्योंकि खून का बदला खून होना ही चाहिए कर्म के अनुसार, उसने मृत्यु दंड मृत्यु खून किया और उसको मृत्यु दंड नहीं मिला तो क्या होना चाहिए? फिर वो अगले जन्म में नरक जाएगा, उसको बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। लेकिन इसी जीवन में यदि उसको मृत्यु दंड मिल गया तो उस पाप के उस खून के पाप से वो मुक्त हो जाएगा, अगले जन्म में पर उसको इसका परिणाम नहीं मिलेगा। लेकिन जिसने खून किया है उसको केवल आजीवन आप जेल में रखोगे, मृत्यु दंड नहीं दोगे, तो क्या होता है? उसके ऊपर दुगना दंड हो जाता है। क्यों? पहले आजीवन भी वो जेल में रहेगा और क्योंकि उसको मृत्यु दंड नहीं मिला तो उसको नरक तो जाना ही पड़ेगा बाद में। सारा जीवन जेल में भी रहा, नरक में भी गया और वहाँ भी बहुत दुख भुगतना पड़ा उसको। और साथ साथ जिसने मृत्यु दंड नहीं दिया उसको भी दंड मिलेगा। तो जो राजा है, राजा को भी दंड मिलता है कि जिसको मृत्यु दंड देना चाहिए था उसको नहीं दिया तुमने। तो इस प्रकार से सही व्यक्ति को मृत्यु दंड देना आवश्यक है। परंतु समस्या आधुनिक काल में क्या है, कलयुग है ना, किसको कुछ भी समझना मुश्किल है आजकल। क्या होता है, क्या सच है, क्या झूठ है, ये कलयुग में सब कुछ इतना झमेला है ना, कौन सच बोलता है, कौन झूठ बोलता है, किसका प्रमाण, किसने घोटाला करके नया प्रमाण बना दिया, ऐसे कितना होता है जमीन के बारे में। किसी ने दफ्तर सरकार के दफ्तर में जाके अपना नाम गलती से वो पैसे घूस दे के चढ़ा दिया, जो असली मालिक आके देखता, अरे दूसरे का नाम है मेरे, ऐसे होता है कि नहीं? तो ये प्रमाण जो है, प्रमाण पत्र क्या होता है कि मैं मालिक हूँ, कागज, वो सरकारी दफ्तर में कागज में कुछ गड़बड़ कर दिया तो क्या होगा इसका? तो ये कलयुग में प्रमाण ही सब दूषित है सब, इसलिए ये मृत्यु दंड आजकल करना बहुत मुश्किल है। तो हमारे भारत में जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने एक निर्णय लिया है जो बहुत प्रसिद्ध निर्णय है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मृत्यु दंड केवल दुर्लभ में से दुर्लभ केस में होगा, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। केवल किसी ने खून किया इसलिए नहीं, ऐसा खून होना चाहिए जबरदस्त, इतना जघन्य तरीके का खून होना चाहिए, तब जाकर उसको मिलेगा। तो ऐसे खैर, और राजा यदि मृत्यु दंड नहीं देगा ऐसे तो उसको ही दंड मिलेगा और जो भी इसमें शामिल हुए हैं उनको, वो भी भागीदार बनेंगे इस दंड के। इसलिए राजा जो है इसके पास में दंड दंडधारी होना ही चाहिए। और राजा अहिंसा नहीं का रास्ता नहीं अपना सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब जगह बस खुलेआम हिंसा करते रहो राजा वेन की तरह, उसको भी उसके लिए भी दंड मिलेगा। तो हिंसा केवल जहाँ आवश्यक है शास्त्रों के अनुसार केवल वहाँ प्रयोग करना चाहिए, अन्य जगह में हिंसा का प्रयोग करने से उसको दंड मिलेगा, और जहाँ दंड का प्रयोग करना चाहिए वहाँ नहीं करेगा तो भी उसको दंड मिलेगा। तो इस तरह से राजा बहुत पद बहुत भारी होता है, बहुत भारी। इसलिए रामायण में भी कहा गया है, अन्य शास्त्रों में भी, कि प्रजा के जो पाप है उसका एक छठा भाग जो है राजा को मिलता है। कल्पना कीजिए, और आजकल के समय में और बड़ी प्रजा, इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं और सब लोग पापी हैं, और ऐसे ये सब जानते ना तो कोई चुनाव के लिए खड़ा नहीं होता। अभी लोग कितना क्या नहीं करते हैं नियुक्त होने के लिए चुनाव में, मंत्री बनना, ये बनना, वो बनना, फिर बन के सबका पाप अपने सर पे लेते हैं, उनको पता नहीं। वो मंत्री बनने के लिए इतना घूस दे के सब पाप पाप करके करते हैं, और मंत्री बनने के और 10 गुना ज़्यादा पाप करते हैं, क्योंकि जो खर्चा किया वो वापस लेना है ना, नहीं तो क्यों मंत्री बने। तो लोग सहते हमारा अधिकार है ना, मंत्री हमको करना चाहिए। मैं मेरे बचपन का एक बात बताता हूँ। मेरे पिताजी सरकार में एक उच्च अधिकारी थे, तो मैं उस समय छोटा था, लेकिन वो बहुत ही ईमानदार थे, घूस वूस कभी नहीं लेते थे, बहुत सख्त इसके विरोध में थे। हम जहाँ रहते थे तो हमारे पड़ोस में भी उनके एक सह अधिकारी थे उसी विभाग के। तो एक बार हमने सुना, उनकी जो पत्नी थी हमारी माँ से बात कर रही थी, उनके घर में कुछ बड़ा तोहफा आया, कुछ उपहार ये वो सब आया, तो मैं भी एक बार खड़ा था उधर, तो दरवाजे वो आ गया, उनको दिया, तो बोलने लगी, हाँ हम तो लेते हैं ना, नहीं तो हम बैठे क्यों हैं यहाँ पर, लेने के लिए तो आए हैं यहाँ पर, सीधा उन्होंने बोल दिया। फिर मैं समझा नहीं उससे, मैं क्या हो छोटा था ना, मैं क्या बोल रहे हैं। बाद में मेरी माँ पिताजी को पता, मैं समझ में आया कि क्या बोल रहे हैं, घूस लेना बोल रहे, घूस लेने की तो अधिकारी बने हैं ना, नहीं तो क्यों बने हम इधर, इतना बड़ा ऑफिसर बन के क्या फ़ायदा, फिर घूस नहीं लिया हमने तो क्या फ़ायदा, हमारा तो हक है ये, इसलिए तो कुर्सी पे बैठे हैं। तो न केवल वो अधिकार चाहते हैं, कर्तव्य नहीं चाहते, लेकिन गलत अधिकार को भी गलत समझ के करते हैं, ये उनका अधिकार नहीं है, उनका कर्तव्य है जो आते हैं उनकी सेवा करना, न्याय देना उनको। वो न्याय देने के बजाय वो क्या करते हैं, उनसे उनका खींच लेते हैं, उसको शोषण करते हैं उनका। तो ऐसे इसलिए तो सरकारी दफ्तरों की इतना खराब। फिर हमारे पिताजी बाद थोड़ी देर बाद में वो कार्य निवृत्त हो गए, जो प्रीमेच्योर रिटायर, जल्दी से समय से पहले रिटायर हो गए। ये सब बहुत झमेला इधर नहीं चाहिए बोल के। और ऐसे हम देखते थे, एक बार क्या हुआ मुझे याद है, हम बाहर खड़े थे तो अचानक कोई बिल्डिंग के, दूसरे बिल्डिंग के बाहर हमारे कॉलोनी में कोई वो आया था, इनकम टैक्स वाले आए थे, आयकर विभाग, उनकी गाड़ी वाड़ी आई बिल्डिंग के बाहर, हलचल मच गई वो सारे बिल्डिंग में। तो हम जब खड़े थे बिल्डिंग में, तो सामने वाले बिल्डिंग में से हमने देखा कि एक व्यक्ति था, हम उनको जानते थे, वो भी ऑफिसर था, उतना ऊंचा लेवल का नहीं था लेकिन फिर भी ऑफिसर था। उसने ऐसे बक्से बांध कर ऊपर से खिड़की से चार तले से नीचे सब फेंक रहा था। क्या था वो पैसा? और जब मैं फिर भक्त बना, तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया वहां पर, वही लोगों ने एक बार प्रवचन देने के लिए बुलाया था मुझे, वो बहुत साल बीत गए थे, तो मैंने ये घटना को सुनाया उनको। लेकिन वो व्यक्ति था नहीं उस समय, क्योंकि बहुत साल बीत गए थे ना, वो भी कहीं गया होगा। तो इस तरह का ये है, सब लोगों को कर्तव्य क्या है, अधिकार क्या है, कोई पता नहीं होता है। वो इसलिए सेवा भाव के लिए नहीं आते। राजनीति में समस्या क्या है, कोई भी सेवा भाव के लिए नहीं जाते, कोई भी ऊंचा पद ले लो, केवल राजनीति की बात नहीं है, डॉक्टर बनना चाहते, कोई क्यों बनना चाहते, पैसा बहुत मिलेगा। कॉलेज में क्यों जाना चाहते हो, बहुत बड़ी नौकरी मिलेगी, बहुत पैसा कमाना है। तो सेवा भाव रहा ही नहीं है, केवल भोग वृत्ति है और अधिकार जमाना सबके ऊपर, मैं जमाऊ, मेरे को मेरा हक है, मुझे मिलना ही चाहिए, कर्तव्य मेरे क्या है कोई नहीं सोचता इसके बारे में। तो आजकल राजा जो मतलब नेता होते हैं ना, क्योंकि राजा की का ये विषय चल रहा है तो इसलिए हम बात कर रहे हैं, तो राजा के कर्तव्य क्या होने चाहिए, राजा का भाव क्या होना चाहिए, ये किसी को नहीं पता। केवल कैसे निचोड़ के लेना है वही बस बाकी। अभी आपको शायद मैंने बताया होगा कि नहीं बताया पता नहीं, ये जब गोकुल धाम की जमीन हम खरीदने जा रहे थे ना, ये 450 एकड़ की जमीन है कुल मिलाकर। तो वैसे कानून की दृष्टि से कोई एक व्यक्ति 50 एकड़ से ज़्यादा नहीं रख सकता है, खरीद सकता है, उसके साथ में नहीं है, कानून क्या है, कानून है ऐसे। और वैसे भी हम ट्रस्ट है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ, हम कोई कृषक नहीं है, किसान नहीं है, केवल जो किसान है वही खरीद सकता है, ऐसा कानून है। परंतु इसमें एक छूट दी गई है, कोई समाज कल्याण के लिए, समाज के लिए जो हित है उसके लिए यदि ऐसे कोई कार्य किया जाए तो इसमें छूट दी जा सकती है। इसलिए हमने इस कानून के इसके तहत कर्नाटक सरकार में अनुमति के लिए अपना प्रस्ताव रखा, ठीक है। तो उसका एक लंबा चौड़ा तरीका होता है, पहले हम वहाँ देते हैं, फिर वहाँ से फिर वापस जिला अधिकारी के पास आता है, फिर वो तहसीलदार के पास भेजता है, फिर वो पंचायत के पास भेजता है, और हर एक स्तर में अपना अपना समय लगता है। तो वहाँ से वहाँ पहचान करके सब जो IAS ऑफिसर थे उनके साथ बात करके जो अनुकूल थे उसको काफ़ी समय लगा, उधर से यहाँ आया DC के पास, उसके दफ्तर में रहा, उसने असिस्टेंट कमिश्नर को भेजा, उसके पास रहा, उसने तालुका में भेजा, तालुका से पंचायत में आया, तो पंचायत में अपना समय लिया रिपोर्ट करने के लिए, फिर वो वापस ऊपर रिटर्न जर्नी में गया, फिर ऐसे हो के फिर वो आके बहुत 1-2 साल लगे उसको पहुँचने के लिए वापस, हर बार जाके इधर पूछना, पंचायत में पूछना, तहसील ऑफिस में पूछना, DC ऑफिस में पूछना, फिर वहाँ जाके बेंगलोर में पूछना, मंत्रियों से मिलना। और जो IAS ऑफिसर थे वो बहुत अच्छे थे, और इतना सब 2 साल हो गए उसको लग गया पूरा चक्कर, फिर कर्नाटक सरकार का कैबिनेट मीटिंग हुआ तो उसमें ये प्रस्ताव भी रखा था। तो उसमें एक मंत्री थे जिन्होंने कट्टर विरोध किया, वो आज भी हैं दिल्ली में, वो बड़े विपक्ष के नेता है वो, उन्होंने विरोध किया। और जो अंदर हमारे जो IAS ऑफिसर बैठे थे जो हमारे बहुत अनुकूल थे, जिन्होंने हमको बोला तो हो जाएगा हो जाएगा, और वो मुख्यमंत्री भी देना चाहते थे, लेकिन ये एक मंत्री भी थोड़ा मतलब शक्तिशाली था, उसने ऐसा विरोध किया इसलिए मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोल पाए, नहीं तो क्या होगा, मुख्यमंत्री से बोलेंगे आपका इसमें क्या है आप क्यों बोल रहे हो वहाँ करो करके, तो वो भी चुप बैठ गया, तो नकार दिया हमारा एप्लीकेशन। तो हमको इतना ही हो गया, अरे 2 साल इतना दिन रात हमने मेहनत किया और अभी हम खरीद भी नहीं सकते इसको, तो क्या कर सकते हैं। तो ये जब हुआ फिर मैं भी बेंगलोर गया और वहाँ के मंत्रियों से मिलने के लिए गया, तो सबने बोला आप ये आदमी से मिलो, ये मंत्री से मिलो, क्योंकि ये सबसे ये है, ये चाहे तो करवा देगा। तब मुझसे मिले और उसने बोला हाँ कर देंगे, 25 लाख दे दो हमको सीधा, मंदिर का जमीन है, मंदिर लेना चाहता है, हम सरकार से जमीन नहीं चाहते हैं, सरकार से पैसा नहीं चाहते, एक प्राइवेट पार्टी से हम खरीदना चाहते हैं, केवल अनुमति चाहिए, वो अनुमति के लिए 25 लाख मांग रहे थे। प्रेम ने बोला नहीं, हम नहीं देंगे, चले गए हम। क्यों देंगे भाई 25 लाख उनको? अब था भी नहीं ऐसा, इतना पैसा थोड़ी है हमारे पास, 25 लाख ऐसे ही मूंगफली की तरह बांटते रहेंगे। बोले हाँ हो जाएगा 25 लाख। तो हम इधर उधर इधर उधर, फिर मैं बम्बई भी गया, बेंगलोर, सारे बड़े बड़े वकीलों से भी मिला, उसमें भी पैसा खर्च हो गया कि क्या करें इसके बारे में। बहुत सारे तरकीब उन्होंने से, ऐसे भी कर सकते हैं वैसे भी। मायापुर में कितनी बड़ी समस्या हुई थी, अभी जाके उन्होंने उसको सुलझा लिया है। तो आखिर उन्होंने बोला वकीलों ने कि देखो राजनीतिक उपाय ही ये उपाय है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। तो उस समय क्या हो गया, वो सरकार गिर गया इधर का, बेंगलोर का, और वो क्या बोलते हैं वो कोलिशन गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं,
राष्ट्रपति शासन,
नहीं संयुक्त पार्टी मिलते हैं करते हैं ना, कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो दो चार आके मिलके सरकार बनाया उन्होंने, तब जाके हमने और एक मंत्री से मिले दूसरे पार्टी के, तो वो बहुत अच्छे थे। फिर पहचान निकाल निकाल के धारवाड़ से, फिर धारवाड़ से बेंगलोर, बेंगलोर में उन्होंने करवाया, और आखिर हमारा काम हो गया। और जिसने किया उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन देखो ये अच्छा काम करके चले गए, तो उनका कितना अभी बेड़ा पार हो गया होगा, अभी कितना लाभ उनको मिला होगा। वो अच्छे व्यक्ति थे, वो अच्छे व्यक्ति थे। तो इसलिए हमको कितना साल, कितना 3-4 साल लग गया पूरा, केवल अनुमति लेने के लिए, ये खरीदने के लिए जमीन इतना। क्योंकि क्या हुआ, लोग बैठे क्यों बैठे हैं, लेने के लिए, और इतना बिना कोई लज्जा के होते हैं, सामने से हम लोगों को मुंह से बोलते हैं 25 लाख को दे दो, मंदिर है, कुछ परवाह नहीं उनको। तो उनको बुरा लगा, हमने बोला मेरे सामने, हमने बोले नहीं देंगे, नहीं देना हमको। जब उनको बहुत बुरा लगा, लेकिन क्या करेंगे, बोलना चाहिए। तो ऐसे है आजकल राजा के, क्या प्रजा क्या, वो राजा का, राजा ही रक्षक ही भक्षक हो जाता है। तो ये क्यों सोचते हैं, ये पद में बैठा हूँ मेरा अधिकार है, लेना चाहिए, इतना हो सके चूस के ले लो प्रजा से, नहीं। लेकिन पृथ्वी महाराज बताते हैं नहीं, ये कर्तव्य है, कैसा है, तो एक दंडधारी राजा का कर्तव्य कैसे होना चाहिए, क्या करना चाहिए उसको। तो आपने नाम नहीं पूछा, वो मंत्री कौन था?
कौन था,
किसी को मालूम है?
इचड़ी
नहीं मालूम,
इचड़ी देवे लोग,
नहीं, उसका उसका पार्टी ने हमको करके दिया, उसके पार्टी ने करके दिया काम, एमपी प्रकाश बोल के थे आदमी, उन्होंने करके दिया। वो देवेगौड़ा के पार्टी के थे, लेकिन जिन्होंने नहीं किया,
वो हिंदू ही था
ना, हिंदुओं के सबसे बड़े शत्रु हिंदू ही है। काम का हम दूसरों को बोलते हैं, ये सबसे बड़े तो अंदर ही है। सब लोग जाग गए अभी, सबके आंखों में चमक है कि कौन है कौन है।
हेगड़े
अच्छे आदमी थे, उसने हेगड़े नहीं तो हरे कृष्ण मंदिर का लैंड दिया उनको, रामकृष्ण हेगड़े, डी के शिव कुमार बोल के था, अभी भी है वो ऐसे, अभी जाके सब जगह बोलना नहीं। हम किसी की शत्रुता नहीं करना चाहते, वो काम का हम लोग संस्था है, वो लोग हमको बहुत तकलीफ दे सकते हैं। काम काम क्यों तकलीफ करा के देना। तो खैर ये है, तो अभी राजा पिथु इस तरह के राजा नहीं थे। वो समझते थे कि राजा कैसे होना चाहिए, तो इसलिए वो यहाँ बोलते हैं मैं भगवत कृपा से नियुक्त हुआ हूँ, मैं इस संपूर्ण लोक का राजा हूँ, और मेरे क्या किस लिए नियुक्त किया गया हूँ, तीन चीजें, रक्षिता पहली बात, तो विपत्ति से बचाना, रक्षिता रक्षण करना, किससे रक्षण करना, प्रजा को कष्ट से सुरक्षित रखना। क्षत्रिय शब्द का अर्थ किसको पता है?
क्षत्रायते
इति क्षत्रिय, त्रायते मतलब राहत देना, क्षत मतलब कष्ट, तो कष्ट से जो राहत दिलाता है वो है क्षत्रिय या राजा। तो प्रजा को कष्ट से राहत दिलाना, कष्ट से बचा के रखना, रक्षा करना, ये राजा का एक पहला कर्तव्य। तो रक्षिता। दूसरी बात वृत्ति दह, वृत्ति मतलब हमारी आजीविका, जीविका का साधन, दह मतलब देने वाले। तो हर एक को कोई जीविका का साधन देना, जैसे प्रभुपाद यहां बताते हैं उसे आजीविका प्रदान करने के लिए, तो सबको कोई ना कोई कार्य मिलना होना चाहिए जिसके द्वारा वो अपना भोजन कर सके, अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। तो ये राजा या शासन, आजकल तो राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है, तो जो भी मंत्री आदि बैठे हैं ऊपर, उनका कर्तव्य होता है इन सबको नौकरी हो, व्यवसाय हो, कुछ भी हो, सबको दिलाना। तो किस अनुसार हर एक व्यक्ति को कार्य में लगाना, इसलिए हम बताया है स्वेशु सेतेषु स्थापिता पृथक। तो सेतेषु का अर्थ प्रभुपाद जी बोलते हैं अपनी अपनी सामाजिक व्यवस्थाओं में, अपनी अपनी सामाजिक व्यवस्थाओं में अर्थात वर्ण के अनुसार। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांतों के अनुसार हरेक व्यक्ति को कोई उपयुक्त कार्य में नियुक्त करना और उसको उस कार्य में लगाना, ताकि उसको उसका जीवन हो जीवन निर्वाह हो सके। ऐसे नहीं कि किसी को भी किसी भी नौकरी में डाल दिया, किसी दूसरे को भी किसी में डाल दिया, ऐसा नहीं। कोई एक व्यक्ति है चलो अच्छा है, उसको फौज में डाल दो, किसी को शिक्षक बनाओ कॉलेज में, उस देखना चाहिए उसकी वृत्ति क्या है, उसकी योग्यता क्या है, उस हिसाब से हर एक व्यक्ति को अपने अपने स्थान में लगाना चाहिए। लेकिन आजकल ये सब विचारधारा किसी के नहीं है, वृत्ति के अनुसार। तो ये तीन कर्तव्य पृथु महाराज बता रहे हैं, कौन सा है, पहला प्रजा की रक्षा करना, दूसरा वृत्ति दह, उन्हों को जीवन आजीविका की व्यवस्था करके देना, मतलब जहां से उनको भरण पोषण हो सके, तीसरा उनको सही कार्यों में लगाना, किसके अनुसार, वर्णाश्रम के अनुसार। तो वर्णाश्रम के अनुसार सही कार्य में लगा के इस तरह से उनके जीवन निर्वाह की व्यवस्था करना। तो ये तीन चीजें हैं जो पृथु महाराज बोलते हैं कि मैं इसके लिए मैंने दंड धारण किया है। और प्रभुपाद जी अंत में बताते हैं कि प्रजा का क्या मतलब है, प्रजायते इति प्रजा, जायते ज जन्म, तो जन्म ले, जो भी जन्म लेता है किसी देश में या राज्य में वो उस देश या राज्य का प्रजा बन जाता है। और प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि केवल मनुष्य ही प्रजा नहीं है, जो पशु प्राणी हैं जिन्होंने यहाँ जन्म लिया है वो भी प्रजा है, इसलिए राजा का कर्तव्य उनके प्रति भी होता है, तो उनको भी अधिकार होता है खाने का, जीने का। तो राजा का कर्तव्य है कि उनकी भी वो रक्षा करें, ऐसा नहीं कि केवल मनुष्यों की करे और मनुष्यों को आए दिन जो बड़े पैमाने पर पशुओं का कत्ल करने के लिए अनुमति दी जाए। नहीं, आजकल तो सरकार ही बड़े बड़े कत्ल खाने खोल रहे हैं। तो ये इस तरह से करने से प्रजा राजा को भी दंड मिलेगा। तो यहाँ चातुर्वर्ण माया सृष्टम के प्रभुपाद जी कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए, लेकिन परंतु यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कलयुग की दशा क्या है। आधुनिक समय में सरकारी या राजकीय संरक्षण प्राप्त न होने से सामाजिक व्यवस्था लगभग ढह गई है। किसी को भी ज्ञात नहीं है कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य अथवा कौन शूद्र है। लोग अपने को जन्म से ही किसी वर्ण विशेष से संबंध बताते हैं। मेरा एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हो गया और मैंने एक जनेऊ धारण कर लिया, मैं ब्राह्मण हूं। प्रभुपाद कहते नहीं, ऐसे नहीं है, योग्यता होनी चाहिए। तो राजा को चाहिए कि वो अपने प्रजा को पहचाने और जिसके जैसे वृत्ति है, जैसे गुण है, वैसे उस कार्य में वो लगाए उसको। ये बहुत बड़ा काम है, परंतु ऐसी सामाजिक व्यवस्था आजकल नहीं रहने के कारण ये सब घोटाला हो गया, अभी सब गड़बड़ हो गया। कोई नहीं समझ सकता कौन किस किस वर्ण का है। तो राजा पृथु ने बताया कि भगवान की व्यवस्था क्या है, कि राजा को कैसे काम करना चाहिए। इसीलिए तो जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि राजा को परमेश्वर के समान माना जाता है। वैदिक पद्धति के अनुसार राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर प्रजा द्वारा उसका मानव रूपी ईश्वर के ही समान आदर किया जाता है। परंतु आजकल ऐसे कहा है, एक नेपाल देश था जहां पे थोड़े साल पहले तक राजतंत्र चलता था और वहाँ के लोग राजा को ऐसे नारदेव से के रूप में मानते थे, जैसे यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे ना, वैसे ही वो लोग मानते थे। परंतु फिर ये साम्यवादी लोग सब आए और फिर उन्होंने राजतंत्र को हटा दिया, प्रजातंत्र को भी हटा दिया। प्रजातंत्र नाम के वास्ते है, अभी साम्यवाद लोग हैं ज़्यादा वहाँ। तो इस प्रकार से एक देश था जिसमें राजा ऐसे कुछ था, वो भी अभी खत्म हो गया है। और अन्य देशों में राजतंत्र है वो तो केवल नाम के लिए है। तो कलयुग में और राजतंत्र की ज्यादा कोई संभावना नहीं है। अधिकांश अभी दिशा तो प्रजातंत्र की ओर चल रही है। यदि प्रजातंत्र में कोई योग्य नेता मिले तब भी ठीक है, परंतु नेता ही ठीक ना हो तो फिर क्या गुंजाइश है, क्या संभावना है कि समाज में कुछ भला होगा। और इसी प्रकार के लोग रहे हैं जो हर चीज़ में 25 लाख मांगते रहे, तो कैसे होगा समाज का भला है कि नहीं। तो इसलिए पृथु महाराज यहाँ अच्छी तरह से स्पष्ट कर रहे हैं कि उनका कर्तव्य क्या है। हरे कृष्णा। हरे राम प्रभु।
ये वर्णाश्रम का सिद्धांत के अनुसार राजा को ऐसा रहना चाहिए और भक्ति का सिद्धांत के अनुसार हम लोग को फर्गेट फर्गी हो तुरंत सुनी चाहिए ना, इतना हम लोग को सिर के ऊपर मारा तो भी उनको बोला हरी नाम को लो। तो इस साइड में जब भक्ति का दृष्टिकोण से हम सभी जगह में कार्य करते हैं, मगर जब हम पढ़ते हैं तो वर्णाश्रम का अनुसार तो उनका वर्ण के अनुसार वो कार्य करना चाहिए। जो अभी हम भक्ति के पथ में जो आते हैं वो भक्तों को अभी भी ये गुण रहता है, और वो जगह भक्ति में जो आते हैं उनके लिए नहीं मिलते, तो फिर वो
हाँ भक्ति में हम सब न ब्राह्मण है न क्षत्रिय है न वैश्य है न शूद्र है, हम सब कौन है, कृष्ण के भक्तों के भक्त हैं, दास हैं बस। तो इसलिए ये भक्त समाज में भेद नहीं करना चाहिए, बल्कि ये अपराध हो जाता है ना। तो ये एक भक्ति की दृष्टि है। फिर भी हर एक व्यक्ति को अपने वृत्ति के अनुसार यदि कार्य करने को मिले, हर एक की वृत्ति तो होती है ना, उसके अनुसार वृत्ति करने के लिए अवसर मिले तो वो खुश रहेगा भक्ति में। तो इसलिए भले वर्णाश्रम वर्णों का की वर्णों की पद्धति हम पूरी तरह से स्थापित न भी कर पाए, यदि हम देखें कि हर एक भक्त की प्रवृत्ति कैसी है, उसका झुकाव किस तरह के कार्यों में है, उस हिसाब से यदि उसको वो कार्य मिल जाए, वो खुश रहे वहाँ पर, तो वो टिका हुआ रहेगा ना लंबे समय के लिए भक्ति में, खुशी से सेवा करेगा, खुशी से अपनी भक्ति भी करेगा साथ में। हाँ, तो ये ज़रूरी है साथ साथ में, क्योंकि हम भक्ति में भी हैं इसलिए शरणागति बहुत महत्वपूर्ण है। तो आवश्यकता पड़ने पर भले हमारी पसंद की सेवा एक प्रकार की हो, परंतु दूसरी प्रकार की सेवा करने की आवश्यकता है तो हमें तैयार होना चाहिए, क्योंकि शरणागति है। उससे मैंने बोल हमारी वृत्ति ऐसी है, हम ऐसे करने, ये कृष्ण की सेवा के लिए कुछ भी करना। तो सुबह को ऑल्टर में रहना, फिर मंगल आरती और पूजा वगैरह करना भगवान के ऑल्टर में रह के, और फिर प्रसाद ले जाना, फिर दोपहर में शौचालय साफ करना, ठीक है, फिर दफ्तर में जाके कुछ हिसाब किताब लिखना, फिर जाके कुछ प्रचार के लिए जाना। एक भक्त ऐसे कर सकता है सारे प्रकार के कार्य, चारों वर्णों के कार्य भक्त कर लेता है कृष्ण के लिए सब ठीक। ठीक है
अधिकार और कर्तव्य का बारे में कैसे जानकारी प्राप्त होगा हर एक व्यक्ति को?
अपने अपने स्थान, वैसे थोड़े ऐसे कर्तव्य हैं जो सर्वसाधारण सबको मालूम होते हैं ना, जैसे हमारा हम सब आवाज़ होता है ना, सबको अच्छा नहीं लगता, अरे कौन इतना कम, लेकिन हमारा कर्तव्य नहीं है क्या आवाज़ नहीं करना? दूसरे लोग आवाज़ करते हैं तो हमको कष्ट होता है, लेकिन हम विचार नहीं करते कि हमको आवाज़ नहीं करना चाहिए ताकि दूसरों को कष्ट ना हो, है कि नहीं? उसी तरह से दूसरा आके हमारे घर के सामने गंदगी रख के जाए, हमारे घर रास्ते में हमारे घर के पास में, तो हमको कैसा लगेगा? परंतु हमें जब मिलता हम इधर उधर गंदगी फैलाते जाते हैं, हम नहीं सोचते। एक साधारण उदाहरण दे रहे हैं, हमको अपना सब साफ चाहिए, अपना सब शांत चाहिए, लेकिन हम दूसरों के लिए ऐसे नहीं करते, हमारा भी कर्तव्य है दूसरों के प्रति। हम चाहते मेरा अधिकार है कि कोई मुझे कष्ट नहीं दे, मेरा भी कर्तव्य है कि मैं भी दूसरों को कष्ट नहीं दूं, इसलिए मैं केवल मेरे बारे में सोचूंगा, मेरा अधिकार ऐसा है, मुझे ये चाहिए, परंतु मुझे देना क्या चाहिए, मेरा कर्तव्य क्या है, उसके बारे में हम नहीं सोचेंगे तो कैसे चलेगा। यदि आजकल समाज में क्या हुआ है, सब लोग ज़्यादा अधिकार के बारे में सोच रहे हैं, कर्तव्यों के बारे में कम सोचते हैं, इसलिए इतना असंतुलन है। परंतु जिस समाज में लोग कर्तव्यों के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, अधिकारों के बारे में कम सोचेंगे, अपना अधिकार के बारे में, वो समाज सुखी रहेगा। जिस समाज में लोग ज़्यादा लेना चाहते हैं कम देना चाहते हैं, वहाँ गड़बड़। जहाँ लोग ज़्यादा देना चाहते हैं लेना कम चाहते हैं, वो सुखी। दोनों जगह प्रतियोगिता होगी, पहले जगह प्रतियोगिता क्या नहीं हो, कैसे होगी, खींचा था नहीं, मुझे चाहिए, वो बोले मुझे चाहिए, तो हम दोनों झगड़ा करेंगे, मुझे चाहिए मुझे चाहिए, फिर एक दूसरे को मारपीट करेंगे। लेकिन दूसरी अवस्था में क्या होगा, नहीं भाई तुम ले लो, नहीं 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 आप ले लो, नहीं नहीं आप ले लो, नहीं आप ले लो, ये झगड़ा हो। लेकिन ये झगड़ा झगड़ा नहीं है, अब छोटी सी चीज, अब भारत में देखो ना, कोई बस में चढ़ते समय, ट्रेन में चढ़ते समय, कहीं भी जाते समय कतार कौन लगाते हैं, लाइन, रांगेत कौन उभराते रहते कौन है? सब ऐसा ऐसा करके सब निकल जाते हैं, धक्का मार के, कोई बूढ़ा हो बच्चा हो माताजी हो को देखते नहीं, अपना को अंदर जाना पहले, छोटी छोटी चीजों में। फिर आध्यात्मिक का बात तो दूर है ना, तो छोटी छोटी चीजों में भी भारत में भी हमारा भक्त लोग भी प्रसाद देते हैं, उसके बाद और सब आ जाते हैं। मुझे याद है वृंदावन में एक बार एक प्रवचन का सीरीज दे रहा था, तो कोई स्पॉन्सर करते थे प्रसाद कभी कभी, किसी ने समोसा दिया, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, तो मुझसे बोलते थे, फिर वो लोग बांटते थे प्रचार के, तो क्लास के बाद जब बांटना शुरू किया तो ऐसा भीड़ लेके सब लोग भाग के, इतना हल्ला गुल्ला, सब लोग एक के ऊपर एक, कोई गिर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं। हमने बोला आज से प्रसाद बंद, हमने बहुत डांटा हो सब सबको, उधर सारे माइक के ऊपर ही सबको डांट दिए, ये क्या है, क्या चल रहा है ये सब, ये बच्चे भी ऐसा नहीं करते हैं, छोटे कैसे व्यवहार है ये, आप लोग भक्त हैं कि क्या है, थोड़ा कतार में आइए, क्या है, पहला मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, भाई सोचो तुम वैष्णव हो, सोचो ना दूसरे को दे, रहने दो, नहीं मेरे को चाहिए, तो क्या समोसा चाहिए, नहीं भले वो इस भाव से भी आते होंगे कि मुझे प्रसाद चाहिए, ठीक है चलेगा, लेकिन अन्यों को भी चाहिए ना, तो सब लोग कतार में खड़े रहो, थोड़ा धीरज रखो, शांति रखो थोड़ा, और बाहर के लोग देखेंगे क्या बोलेंगे, ये भक्त लोग कैसे व्यवहार करते हैं, और थोड़े लोग दुखी हो जाते हैं, कोई लोग बोलते हैं अभी हम जाएंगे नहीं, हम उनको भी बुरा लगता है, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं हमारे दैनिक जीवन में भी, ये कर्तव्य और अधिकार का हमको सोचना चाहिए, और खास करके जब हम भक्त हैं तो लोग ये सामने से देखते हैं उनको, अरे क्या कैसे भक्त हैं ये लोग, ठीक है,
अभी समाज में इतनी संवेदनशीलता नहीं रही
कि भक्तों में तो कम से कम रहनी चाहिए, है कि नहीं, नहीं तो हम समाज को कैसे प्रचार करेंगे, क्या सिखाएंगे उनको कि आप हमारी तरह बनिए, बोले कि बने नहीं, हम लोग तो कतार में खड़े रहते हैं, आप लोग नहीं खड़े रहते हो, आपके जैसे क्यों बने हम, वो बोलेंगे। बराबर कि नहीं,
प्रशिक्षण की आवश्यकता,
कॉमन सेंस हर आदमी को सोचना चाहिए, मतलब ये सिखाया नहीं गया, ना घर में सिखाया गया है ना स्कूल में सिखाया गया है, ये समस्या है, ये प्रशिक्षण कहीं नहीं मिलता आजकल लोगों को, ऐसे बर्ताव करना चाहिए, समाज में जाए तो कतार में खड़ा होना चाहिए, सड़क को गंदा नहीं करना चाहिए, जोर जोर से बात नहीं करना चाहिए। मुझे याद है हम लोग एक यात्रा में जा रहे थे एक बार, तो बहुत सारे भक्त थे, लेकिन सब इकट्ठा नहीं हुआ था, तो सब भक्त लोग सब बिखरे हुए थे सारे गाड़ी में, तो हमारे कंपार्टमेंट में वो थोड़े लोग पास वाले इसमें बैठे थे, जोर जोर से रात तक 12:30 एक बजे तक जोर जोर से बात करके वो कर रहे थे, तो दो तीन बार किसी ने बोला नहीं, क्योंकि क्या है, कोई झगड़ा कौन करेगा साथ ना, तो फिर एक माता जी थी हमारे भक्त में ही थे, उनकी आवाज एकदम अच्छी थी, तो उन्होंने जोर से एक बार उनको डांटा, आपको शर्म नहीं आती क्या, सारे ट्रेन को आप जगा के रखते हैं, सो जाइए आप। तो हमने सोचा अभी देखते हैं क्या होगा, कुछ नहीं हुआ है, शांति से वो सब सो गए। मतलब उनको क्या ये पता नहीं, स्कूल कॉलेज जाके आ गए हैं लोग, उनको परवाह नहीं है कि बाकी सब लोग सो रहे हैं, हम इतने जोर से हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब हो रहा होगा, सोचते ही नहीं है दूसरों के बारे में, हमारे कारण से दूसरों को क्या होगा, ये समस्या। इसलिए हमारे आश्रमों में भी यही, ब्रह्मचारी आश्रम, हर आश्रम में ये समस्या होती है। क्यों, कोई लेट आता है प्रचार से, लाइट चालू करता है, दरवाजा खड़ कुड़ कुड़ करता है, अपना कबड़ घुड़ 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 को आवाज करता है, तो जो सो रहा है वो बोलता रहे क्या शांति से करो, लाइट क्यों चालू करते, हाँ होता है कि नहीं, या तो सुबह से भी कोई उठता है, कोई दो बजे उठ जाता है, और तो उसको फिर उसका कमरे में ये होता है, वो अंदर चार पांच लोग होते हैं, कोई लेट सोता है, कोई बीच में आ जाता है कभी जब सो रहे होते हैं, तो ये हर ब्रह्मचारी में होता है। तो हम थोड़ा देर से आए, कभी प्रचार के लिए जाते हैं लेट हो जाता है, ठीक है, कोई अपने तपस्या करने के लिए जल्दी उठता है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इतना देखना चाहिए हमको कि हम शांति से करें ताकि दूसरे लोग डिस्टर्ब ना हो जाए, है ना, आवाज़ ना करें हम, बिना वजह लाइट चालू ना करें, ये सब देखना चाहिए। अब ये सब मंदिर में सीखने की बातें नहीं है, ये सब स्कूल और घर में सीखने की बातें हैं, लेकिन आजकल ये सब नहीं सिखाते हैं, इसलिए मंदिर में ये सब सीखना पड़ता है ना। अपने आप को कैसे साफ रखना है, ये सब मंदिर में सीखने वाली बातें हैं क्या, ये सब घर में सीखने वाली बातें है कि नहीं, लेकिन ऐसे नहीं सिखाया जाता इसे।
हमारा संकीर्तन के बारे में, हम जब मेट्रो सिटी या अलग शांत उपवास एरिया में जाते हैं सिटी में, तो हम देखते हैं कि हम जोर से संकीर्तन करने लगे, तो एक बार हम उनको बोल रहे बाहर का सामान्य लोगों शोर मचाओ मत, ऐसे बोलते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि आपका संकीर्तन चालू रहता है उस वक्त कितना शोर मचाते हैं, तो इसको कैसे समझो, हम तो उनको संकीर्तन हर नाम के
साथ। आध्यात्मिक दृष्टि से ये है कि हम लोग भगवान का नाम ले रहे हैं, और हम लोग जब सड़कों पे जाते हैं तो एक आध बार जाते हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि एक ही स्थान में हम हर रोज जाते हैं। अभी मंदिर में जहाँ तक हमारे आरती कीर्तन की बात है, वो लोग आके हमारे बाद में रहे वहाँ पर, अभी क्या करें, इसलिए मंदिर के पास में जितने भक्त रहें उतना अच्छा रहेगा। फिर भी मंदिर में रह के मुझे भी बार बार हमारे मंदिर में भी बेलगाम में बोलना पड़ता है, भाई थोड़ा लाउड स्पीकर कम करो, हाँ अब बाकी के लोग बोल रहे हैं, हमारे भक्त लोग उत्साह में आके वो जोर से लगाते हैं, बार बार बताना पड़ता है, बार बार बोलने के बाद भी समझता नहीं, फिर बाकी के लोग फिर मंदिर को भला बुरा कहते हैं, उनके बारे में थोड़ा सोच के थोड़ा हल्का कर सकते हैं ना, बिना माइक के कभी कर सकते हैं, अभी हम रह रहे हैं शहर के अंदर तो क्या करें, जब गोकुल धाम में है तो यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है हमारे लिए, ये हम कर सकते हैं, दुआधार कर सकते हैं,
दुआधार करने के लिए वो
सिटी भी बजा,
हाँ
सिटी भी मूड में आके सिटी भी बजा,
और भक्त तो लोग बजाते हैं कि बाहर वाले बजाते, भक्त तो लोग सिटी उटी अच्छा नहीं लगता। कीर्तन हमारा करना चैतन्य महाप्रभु के स्टाइल में, प्रभुपाद जी ने जो सिखाया ऐसा है, ऐसा करना है। लिखाया था ना एक बार, याद है ना, किया था ना, ऐसा करना चाहिए। तो आज के कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं?
अधिकार और कर्तव्य। हमारा भौतिक दुनिया में ज्यादा से ज्यादा अधिकार के लिए हम ये करते हैं, लेकिन कर्तव्य को हम निभाते नहीं। उसके लिए हम पहले कर्तव्य को निभाना चाहिए, बाद में अधिकार आ जाए।
ऐसा नहीं है कि अधिकार अपने महत्वपूर्ण नहीं है, है? परंतु केवल अधिकार अधिकार के पीछे जाएंगे, कर्तव्य का ख्याल नहीं रखेंगे तो इससे नहीं चलेगा। दोनों का संतुलन होना चाहिए। और क्या
राजा क्या कर्तव्य होता है? कि वो प्रजा का रक्षा करे और प्रजा को सही वृत्ति में, अपनी अपनी वृत्ति में लगाए और वर्णाश्रम के अनुसार उनको सेवा दे,
जीविका आजीविका
करने की।
ठीक है, और क्या सुना?
अगर हर एक समाज में कर्तव्य के बारे में सब लोग विचार करते रहे, अधिकार में कम, तो फिर वो सुखी या आनंद से रहेगा समाज।
और नहीं तो?
नहीं तो गड़बड़।
और कोई बात? हेड़े हेड़े।
जब स्वतंत्रता दिया गया है तो उसके साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी और कर्तव्य भी दिया गया है, और जब जब किसी का बुद्धि विकास नहीं हुआ रहता है तो उसके स्वतंत्रता पे रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है।
बहुत अच्छा, और कोई बात?
मृत्युदंड उसको दिया उसकी सजा के लिए तो उसकी गति अगली गति अच्छी हो जाती है और उसको सजा भुगतनी नहीं पड़ती।
बहुत अच्छा, और
जो गलती करता है उसको मृत्यु दंड देना चाहिए, अगर राजा ने नहीं दिया तो उसको भी उसका सजा भुगतना पड़ेगा। और उसको जो अपराधी को मृत्यु दंड दिया जाएगा तो इसी जन्म में उसका पाप समाप्त हो जाएगा, तो इसलिए मृत्यु दंड देना आवश्यक है उसको।
ठीक है, बहुत अच्छा, और कोई बात?
अगर अपने प्रजा को सही शिक्षा नहीं देता तो उसका छठा भाग पाप, प्रजा का छठा भाग उसको स्वीकार करना पड़ता है, देना
पड़ता है। बहुत अच्छा है, और
जो भी नौकरियां करते हैं वो सेवा भाव से नहीं करते, सिर्फ पैसा कमाने के उद्देश्य से करते हैं, जो भी शिक्षा देते
हैं। बहुत अच्छा, और सूरज
हरि को उनकी योग्यता के अनुसार आजादी देना चाहिए, जिसने बच्चे का एक उदाहरण दिया।
हरि को अपने अपने स्तर पे आजादी मिलनी चाहिए, ऐसे बच्चे को अलग, बड़े को अलग। बहुत अच्छा, और
राजा का कर्तव्य है, राजा का जो पोस्ट है बहुत ही
जिम्मेदारी
का पोस्ट है, क्योंकि जहाँ पे उसको क्या कहते हैं दंड देना चाहिए वहां पे अगर नहीं दंड नहीं दिया, या फिर जहाँ पे दंड नहीं देना चाहिए वहां पे दंड दे दिया तो ये सही बात नहीं है।
जहाँ दंड देना चाहिए वहां नहीं दिया, और जब ना जहाँ नहीं देना चाहिए वहां पे दिया, तो दोनों अवस्थाओं में किसको दंड मिलता है? फिर
राजा को
राजा को
वर्णाश्रम के अनुसार जब जो व्यक्ति है उनको जो गुण है गुण के हिसाब से सेवा करने से वो भक्ति भी अच्छा कर सकता है।
तो अपने अपने प्रवृत्ति के अनुसार जब किसी को सेवा में लगाया जाए तो वो खुश रह सकता है। और कोई बात?
संवेदनशीलता कॉमन सेंस की बात है। इसको घर या स्कूलों में सिखाया जाता है, मंदिर में नहीं।
लेकिन आजकल
स्कूल और घर में नहीं सिखाया जा रहा है, इसलिए मंदिर में सिखा। और प्रसाद के लिए कतार में खड़ा होना चाहिए।
केवल प्रसाद के लिए?
बाहर एक समस्या है, मुझे बहुत सारे कामों के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो लाइन में नहीं रहते, तो हम लाइन में रहेंगे तो हम जाएंगे नहीं।
इसलिए एक सामाजिक समस्या है ना, वो एक व्यक्ति सारा गड़बड़ कर देता है। 10 लोग लाइन में खड़े हैं तो एक व्यक्ति गड़बड़ करता है तो उसको देख के सारे पीछे भी सब लोग गड़बड़ करते हैं, तो ये बाकी 10 जो है उनको इस आदमी को दंड देना चाहिए। है ना?
यद्यदाचरति श्रेष्ठ।
नहीं, वो का ऐसे आके वो हो जाता है ऐसे। तो एक सामाजिक चेतना है, इसकी कमी है भारत।
अगर नेता लोग ही लेने के लिए बैठे हैं तो समाज में सुधार कैसे?
अधिकार को भी गलत तरीके से ये अधिकार है करके सोच,
जो अधिकार नहीं है उसको भी अधिकार समझ लेते हैं। और किसने घूस मांगा ये आपने सुना नहीं है, ठीक है? ठीक है ना? आपने सुना नहीं? नहीं सुना ना?
नहीं सुना ना?
आपको मालूम ही नहीं है, ठीक है ना? ठीक है। हाँ, धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री निताय गौर हरि की जय। गौर प्रेमानंदे हरि गौर। अरे, आज प्रसाद किसने